एक वर्ष बीत गया, इसका पता भी न चला। भगवान परशुराम के साहचर्य में रहने का भाग्य इतना महत्वपूर्ण था कि मैं एक दिग्विजयी सेनापति हूँ, एक दानवीर हूँ। मन को उन्मत्त बना देने वाले ये विचार कब के लुप्त हो गए थे। मैं एक शिष्य बन गया, एक यात्री बन गया। जो कुछ चमकता है वह सभी सुवर्ण नहीं होता, यह मैं जान गया। केवल पराक्रम ही जीवन का अर्थ नहीं होता, जागृत चिंतन भी होना चाहिए, यह मेरी समझ में आया। शीघ्र ही मैं गुरुदेव का शिष्य, प्रिय शिष्य हो गया। अन्य शिष्य मुझसे ईर्ष्या करने लगे, ऐसा वातावरण निर्मित हो गया। आश्रम का प्रत्येक दिन मेरे पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण परशुराम भगवान के साहचर्य में उज्ज्वलतर होता जा रहा था। अनेक बार गुरुदेव मुझसे कलिंगों के राज्य में चलने के लिए आग्रह करते, परंतु कुछ न कुछ निमित्त बताकर मैं उनकी बात टाल देता। ऐसा करते समय मुझे बड़ी यातना होती थी, और दूसरी जो बड़ी बात कसकती रहती थी वह थी अपने कुल के संबंध में असत्य कथन। कभी कभी उस प्रतीति से आसपास की पर्णकुटियाँ जैसे मुझे काटने दौड़ पड़ती थी। मन अत्यधिक कुंठित हो जाता, ऐसा लगता जैसे मुझे किसी कोने में दबोचा जा रहा हो। ऐसे समय शांत रहने के लिए घड़ी दो घड़ी मन को उलझा दिया जाए, यह सोचकर धनुष लेकर मैं मृगया हेतु महेंद्र के अरण्य में निरंतर घूमता रहता। जो कुछ मृगया होती थी वह एक भील को देकर भाल पर से स्वेद पोछता हुआ पुनः चढ़ाई कर चढ़कर आश्रम लौट आता। जी भरकर भटकने के कारण वह दिन उल्लास में व्यतीत होता, पुनः नए उत्साह से आश्रम जीवन आरंभ होता। ऐसे ही एक बार मन अत्यधिक अस्वस्थ था, इसीलिए धनुष उठाकर मैं आश्रम के बाहर अरण्य में चला गया। दोपहर टल चुका था, शाखा पर शाखाओं के रगड़ से उत्पन्न चिंगारी दूर कहीं आग सुलगा रही थी। उसके धुएं का बादल मुझे महेंद्र के एक किनारे की ओर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। इस उष्णता से पक्षीगण कुछ चैन पाकर शायद शांत हो गए थे। संध्या समय तक यथेष्ट भटकान करने पर भी एक पशु दिखाई नहीं दिया, इसलिए मन उदास हो गया। खिन्नता से लौटता आश्रम पहुंचने के विचार से महेंद्र की चढ़ाई कर चढ़ने लगा। कानों के कटे हुए निचले भागों से श्वेत बिंदु शीघ्र ही नीचे नहीं टपकते थे। दोनों छोर होने के कारण वे दोनों ओर विभक्त होकर बारंबार बीच में ही रुक जाते थे। उन्हें हाथों से पूछने का मुझे अभ्यास हो गया था, ऐसा ही उनको एक बार पूछा। सर खस खस, कोई पशु आश्रय स्थल छोड़कर शायद बाहर आ रहा था। उसकी हलचल से मार्ग के किनारे जंखाड़ों के एक झुरमुट से खसखस ध्वनि आने लगी। बहुत दिनों के बाद आवाज का लक्ष्य भेद करने का यह शुभ अवसर हाथ आ रहा था। धनुष उठाकर मैंने एक अमोघ बाण चढ़ाया, प्रत्यंचा कान तक खींचकर आवाज की दिशा में झट से छोड़ दिया। अंगूठे के स्पर्श से कान के कटे हुए छोर पुनः हिल उठे। सू आवाज करता हुआ बाण पर्ण झाड़ी में घुस गया, निश्चय ही वह चूकने वाला नहीं था। अम्मा, बाण के मर्म भेदन से वन्य पशु के स्थान पर एक गाय का प्राणांतक रंभाना मेरे कानों से टकराया। दूसरे ही क्षण सरसराता हुआ शरीर रोमांचित हो उठा, हाथ से धनुष अपने आप छूटकर गिर पड़ा। समस्त शरीर कंपित होने लगा, आसपास के लता वृक्ष घूमते हुए से प्रतीत होने लगे। यह कैसे हो गया? शुभदे, कोई जोर से पुकार रहा था। झुरमुट निरंतर अभी हिल रहा था, पुकारें क्षण प्रति क्षण बढ़ती जा रही थी। दौड़ते हुए जाकर झुरमुट के सघन पर्ण समूह को हाथ से दूर करते ही उस ओर का दृश्य देखकर मुझे अपने हृदय की धड़कन रुकती हुई प्रतीत हुई। एक शुभ्रवर्णी गाय अपने खुर पटकती हुई नीचे पड़ी छटपटा रही थी। मेरा अमोघ बाण उसके मस्तक में बहुत गहरा गड़ गया था। एक बेल में उलझे हुए सिंहों को निकालने का उसका प्रयत्न अधूरा ही रह गया था। वे लता में ज्यों के त्यों उलझे हुए थे, सारा झुरमुट उद्ध्वस्त हो गया था, सब कुछ विचित्र दिखाई दे रहा था। झुरमुट में से कूद कर मैं उसके मस्तक में लगे हुए बाण को निकालने का प्रयत्न करने लगा, परंतु वह उसके कपाल में गहरा घुस चुका था। बाण के हिलने डुलने से होने वाली पीड़ा से वह इतने हृदय भेदक स्वर में डकारने लगी कि क्षण भर को मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे उसके डकारने से मेरे कटे हुए कानों के भीतर सुरक्षित पटल भी विदीर्ण हो जा रहे हों। जीभ लंबी निकाल कर वह मृत्यु से पूरी शक्ति से जूझती हुई भयानक हिचकियाँ लेने लगी। घुटने टेक कर मैं तत्क्षण नीचे बैठ गया। क्षण भर को लगा जैसे शरीर प्रस्तर हो गया हो। संपूर्ण विश्व मंडल घूम रहा है क्या? जिन बाणों से मदोन्मत लोगों के सिर उड़ाए जाते हैं उन्हीं में से एक उस समय गाय के मस्तक में था। शुभ दे पुकारें समीप आ रही थी। कुछ पलों में ही एक वृद्ध ब्राह्मण मेरे सामने आकर खड़ा हुआ, देह पर गिरने वाले पाषाण खंड की तरह। अपनी गाय के मस्तक में बाण घुसा हुआ देखकर एक बारगी में बड़ी जोर से चीख पड़ा। उसके आक्रोश से रणांगण में वीरों के और वाद्यों के कोलाहल को सह लेने वाला मेरा शरीर, गंभीर मन भी कांप उठा। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली। शुभदेह, किस चांडाल ने तेरे मर्म स्थल पर यह प्राणांतक बाण छोड़ा है? आगे बढ़कर गाय के मस्तक से बाण को निकालने का वह भी व्यर्थ प्रयत्न करने लगा। उस यातना से वह और अधिक तड़पने लगी, गगनभेदी स्वर में डकारने लगी, खुर पटकती हुई आँख चढ़ाने लगी, उसके मुख से निरंतर फेन गिरने लगा। अब अपने कुटुंब का भार किस पर डालूं? तेरे दूध पर पोषित यह शरीर किस लिए जीवित रखूं? वह वृद्ध गाय के मुंह को सहलाता हुआ सिसकने लगा। हृदय को भेद देने वाली इतनी करुणा मैंने कभी नहीं देखी थी। मेरी मृगया से ही वह उत्पन्न हुई थी। आवाज का लक्ष्य भेद करने वाली जिस कला ने एक बार मुझे अखाड़े में गौरव के शिखर पर चढ़ाया था, वही कला आज मुझे रौरव नरक के गहन गर्त में धकेल दे रही थी। मैं कर्ण दिग्विजयी सेनापति दानवीर भगवान परशुराम का प्रिय शिष्य, आह, मैं अब केवल एक गो हत्यारा था, महापापी था, अनिवार्य घटनाओं द्वारा ठुकराया गया निर्माल्य था। प्राणांतक यातनाओं से छटपटाकर खुरपटक कर गाय ने अंतिम हिचकी ली। श्वेत कमल जैसा गोल मस्तक टुड़काते हुए फेनिल जीव ऐंठते हुए उसके प्राण निकल गए। उसकी आंखों के निष्प्राण पुतलियां मामा के दूध के पासों से भी अत्यधिक भयानक लगी मुझे। क्षण भर में ही उसके शव को हस्तगत करने के लिए वन मक्षिकाओं ने उसके चारों ओर भिनभिनाना प्रारंभ कर दिया। मैंने अपना मुख लज्जा से विदारक पीड़ा से दोनों हथेलियों में छुपा लिया। सन्यासी, तुम्हें क्या दो? मैं ही आज उठ गया हूँ, उस वृद्ध ने मेरे कंधों पर हाथ रखकर कहा। उस स्पर्श से मेरा संपूर्ण शरीर पानी पानी हो गया। मैंने उसकी गाय का वध किया है, मेरे वस्त्रों के कारण, वह यह बात उसने बिल्कुल भी न सोची होगी। झुककर उसके चरणों पर हाथ रखकर मैं व्याकुल होकर बोला, ब्रह्मन क्षमा करे, आपकी शुभदा आपकी गाय मेरे ही बाण से प्राण गवा बैठी। मृगया करते समय भूल से वन्य पशु समझकर मैंने असावधानी से उस पर बाण छोड़ दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको 5 गायें दूंगा। जीवन में पहली बार मैं याचक बना, दीन बना, विवश बना। दूर हो, उसने मुझको तत्क्षण धक्का दिया। क्षण भर पहले अपनी गाय के लिए बालक की तरह रोने वाला वह वृद्ध दूसरे ही क्षण यज्ञ कुंड की तरह संतप्त हो गया। उसके होंठ थरथरा रहे थे, आंखें आग बरसा रही थी। सन्यासी होकर मृगया करता है, देह पर पहने हुए भगवा वस्त्र जला क्यों नहीं डालता? एक गाय के लिए 5 गाय देने वाले गो हत्यारे, अपनी एक माता के मर जाने पर तू संसार की 5 स्त्रियों को माता कह देगा क्या? मैं तुझे आज दिखा दूंगा कि तेरी सन्यासी तपस्या से मेरा ब्रह्म तेज अधिक प्रखर है। नहीं नहीं, मैं सन्यासी नहीं, मैं एक योद्धा हूँ, भगवान परशुराम का शिष्य हूँ। मैंने पुनः उसके चरण पकड़ लिए। दूर हट, तेरा स्पर्श भी गोहत्या के समान भयानक है, योद्धा योद्धा कहकर उन्मत्त होकर गाय पर बाण छोड़ने वाले अधम, तेरे रथ का चक्र भी ऐन युद्ध के समय भूमि में गड़ जाएगा। उस गाय के मस्तक में गड़े हुए तेरे इस बाण की तरह ही प्राणपण से कितना भी प्रयत्न करेगा, लेकिन वह कभी बाहर नहीं निकलेगा। जा चलतापन, वह धड़धड़ाकर पैर पटकता हुआ स्वयं ही चला गया, अपनी गत प्राण सुविधा को यूं ही छोड़कर। मेरा लक्ष्य भेद कर मेरी मृगया कर, उसके शाप से मेरा मन सुन्न और बधिर हो गया। ऐसा लगने लगा जैसे देह पर पहने हुए भगवा वस्त्र वस्त्र न होकर चारों ओर स्वच्छ लपलपाने वाली अग्नि ज्वालाएं हों। संपूर्ण जीवन की समस्याओं की ज्वाला लेकर मेरे चारों ओर चक्कर लगाता हुआ नाच रहा था। कहाँ जाने वाला था मैं? शरीर के भार को उठाकर आश्रम की ओर चलते समय अभिशप्त मन निराशा से भर उठा था। आज क्रूर देव ने मेरे अंदर की वीर्ण कर्ण की मर्मभेदी मृगया की थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे उस शाप से सारा शरीर ही कहीं गहराई में जा धंसा हो। मन उस गाय की तरह ही छटपटा रहा था, चीख रहा था, चुपचाप निःशब्द भाव से भीतर ही भीतर। जिस भील को प्रतिदिन मृगया दिया करता था, उसको गाय की मृतदेह धरती में गाड़ने को कहकर उसके हाथ में अशुभ धनुष विसर्जित करता हुआ उसे बोला, आज से मृगया समाप्त। महेंद्र की चढ़ाई चढ़ते हुए पिंडलियों की स्नायु पहली बार कस उठे। आश्रम के परिसर में पैर रखते समय गायों की गोष्ठ की मंजुल ध्वनियां मुझे सदैव की तरह मधुर नहीं लगी, वरन शमशान वाद्यों की तरह भयानक और विभत्स लगी। बिना कुछ खाए ही प्रार्थना भी न करा उसी दशा में दर्भ की शैया पर शरीर डाल दिया। निद्रा की आराधना करने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। मृत्यु को भी लज्जित करने वाली शुष्कता मन को घेर रही थी। आश्रम के चारों ओर झिंगुर कर्कश स्वर में किर्र किर्र कर रहे थे। 7 उस एक ही घटना से मेरे मन में इतनी गहन पीड़ा हुई जितनी की कवच कुंटल अलग करते समय भी नहीं हुई थी। आश्रम में कुछ वह दुखी किसी को बताया नहीं जा सकता था। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें चुपचाप सहना पड़ता है। स्मृति के ऐसे दुखों का काला वस्त्र उधेड़ कर धागे निकालने में कोई कभी सफल नहीं हो सकता, फिर भी उनके कालेपन को कम करने का प्रयत्न मन करता रहता है। इसी को जीवन कहना चाहिए। आनंद की वृद्धि न सही, फिर भी दुख की तीव्रता कम करने का नाम ही जीवन है। उस मन स्थिति में अकृत व्रण की अमूल्य सहायता प्राप्त थी। अल्पावधि में ही हम दोनों के बीच घनिष्ठ स्नेह संबंध स्थापित हो गया था। मेरे सभी कार्यों को वह बड़े अपनत्व से कर रहा था, नए विचार दे रहा था। उनको सुनकर गोहत्या की कटु स्मृति भी धूमिल होने लगे। दिन और रात के श्वेत कृष्ण अश्वों को दौड़ाता हुआ काल का रथचक्र घटनाओं के आरे घुमाता हुआ निरंतर दौड़ रहा था। मनुष्य जहाँ रहता है वहाँ के सभी वस्तुओं के प्रति उसे एक अज्ञात आकर्षण हुआ करता है, समीपता लगा करती है। महेंद्र पर्वत के प्रति मुझे ऐसे ही निकटता का आभास होने लगा। समुदाय एकत्रित करने के लिए उसकी खाइयों में तथा चोटियों पर घूमते समय कभी कभी कछार में तृण पर्णों पर चमकती हुई सघन ओस की बूंदों को देखकर जीवन ओस की बूंदों जैसा ही होता है कहने वाले अश्वत्थामा की याद आ जाती थी। उसने अनेक अवसरों पर जो दिव्य विचार सुनाए थे मन में उफन उफन आते। कर्ण तुम कौन हो यह आत्म परीक्षण से जानो, अपने अंतरंग को एकाग्र करो, गंभीर बनो। उसके विचार मेरी दृष्टि से क्या अविस्मरणीय नहीं थे? उसी प्रकार जब कभी पर्वत पर कोई सतेज वन कदली वृषाली का स्मरण करा देती, वन केवड़ा का खड़ा दंड देखकर निश्चल प्रेम भरा शोण आंखों के सामने आ खड़ा होता। डौलदार वटवृक्ष को देखकर मन पितामह के जीवन की उससे तुलना करने में तल्लीन हो जाता। महानदी का शांत जल माता पिता की स्मृति जागृत कर देता, परंतु जब उस जल में भ्रमर देखता था तब तो उसमें मुझे राजा दुर्योधन ही दिखाई देता था। किसी कटीली भूमि को देखकर गुरुद्रोण की और दलदल भूमि भरी भूमि में हराशावाल देखकर अनिवार्य रूप से शकुनी मामा की मूर्ति आंखों के आगे खड़ी हो जाती थी। स्मृतियाँ अपनी छाया जैसी ही होती हैं, वह मन का निरंतर इसी तरह पीछा करती रहती है। भगवान परशुराम को देखकर श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था और आंखों के आगे शिशुपाल वध का प्रसंग स्पष्ट खड़ा हो जाता था। उस दिन के बाद एक बार भी श्री कृष्ण से मैं मिल नहीं पाया था। अब उनसे मिलने का आकर्षण भी उतना नहीं रहा था। अब यह आश्रम जीवन काल के हाथों में हाथ डाले चला जा रहा था। रात को निद्राधीन होते समय बचपन से लेकर अब तक घटे हुई घटनाओं के दर्शन कर थका हुआ मन भवितव्य को लक्षित करने की खटपट करता, परंतु इस प्रकार कोई कभी उसे अचूक लक्षित कर सका है क्या? अज्ञात भविष्य में क्या क्या छिपा हुआ है यदि यह मनुष्य जान सका होता तो जीवन का हर निश्चलने वाला संघर्ष, कोलाहल, खटपट सब कुछ कब का रुक गया होता, परंतु यह तो हो नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति आशा के सहारे जीवित रहता है। मैं भी वही आशा हृदय पर रखकर ब्रह्मास्त्र की आराधना कर रहा था। हस्तिनापुर छोड़े हुए 2 वर्षों से अधिक समय बीत गया था। ब्रह्मास्त्र के दिव्य मंत्र पूर्ण होते जा रहे थे। इस शस्त्र से सूर्य किरणों पर भी विजय प्राप्त की जा सकती थी। दिव्य तथा दीप्तिमान प्रकाशपुंज के अतिरिक्त प्रत्येक कठिनतम वस्तु उससे पिघलाई जा सकती थी। सभी अस्त्रों में श्रेष्ठ अस्त्र था वह, और यह सामर्थ्यशाली विद्या भगवान परशुराम ने एक पूर्णिमा को अभिचार मंत्र सहित संपूर्ण रूप से मेरे अधीन कर दी। आचमन जल मेरे हाथ पर डालते हुए वे गंभीरतापूर्वक बोले, भार्गव, यह ब्रह्मास्त्र विद्या है। दुर्बल और निःशस्त्र पर इसको कभी मत छोड़ना। यदि ऐसा प्रयत्न करोगे तो यह तुम पर ही उलट जाएगी। सामर्थ्य का अर्थ ही दुर्बल के अधिकार की रक्षा करना। जो आज्ञा भगवान, मैंने माता पिता के अतिरिक्त किसी की पहली बार श्रद्धा से किसी के चरणों में पैर झुकाया था, सिर झुकाया था। मुझे लगा जैसे मेरा जीवन धन्य हो गया हो। मेरी आंखों से धन्यता के अश्रु उनके पुण्य पावन चरणों पर गिर पड़े, और तुम्हारे सौभाग्य से आज ही मेरा वर्ण व्रत समाप्त हो रहा है। उसकी पूर्ति के लिए मैं आज पूर्व सागर में दिन भर खड़ा रहूंगा। रात भर गायत्री मंत्र का पुरस्चरण करते करते आंखें पधरा गई हैं। विगत 4 दिन उपवास में बीते, इसलिए आज तुम्हें मेरे साथ कलिंग राज चलो। शरीर कुछ थका हुआ है। उन्होंने व्याघ्र चरम पर से उठते हुए मुझे आज्ञा दी। मेरे सम्मुख यक्ष प्रश्न उपस्थित हो गया। मन को पक्का कर मैंने स्वीकृति सूचक सिर हिलाया, टाल मटोल नहीं की। महेंद्र छोड़कर जाते समय उनकी इस अंतिम आज्ञा को किसी व्यास से टालना मुझे अच्छा नहीं लगा। शिष्यगणों के जय जयकारों की घोषणाओं के बीच हम दोनों आश्रम छोड़ने लगे। अकृत व्रण से विदा लेते समय मेरे हाथ कांपने लगा। प्रथम पहर प्रारंभ हो ही रहा था कि हमने आश्रम की बाढ़ को पार किया। कवच न होने के कारण अब मुझे धूप की तीव्रता का अनुभव होने लगा था। फिर भी गुरुदेव के साथ महेंद्र की ढलान को उतरते हुए मन समाधान से पूर्ण था। ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति के कारण सामर्थ्य की प्रतीति शायद सुखद लग रही थी। भार्गव, तुमसे कभी पूछा नहीं, परंतु आज एक प्रश्न पूछने की इच्छा हो रही है। पूछिए गुरुदेव, यथामति उत्तर दूंगा, मैंने भी समय उनसे कहा। तुम्हारे कानों के निचले भाग कटे हुए क्यों हैं? ऐसा मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे मस्तक पर उनके परशु का आघात हुआ हो। एक वृद्ध ब्राह्मण को मेरे कानों के कुंडलों की आवश्यकता थी। कान काटे बिना वे दिए नहीं जा सकते थे, इसलिए मैंने उन्हें काट दिया। मैंने सत्य कह दिया। उत्तम, भृगुकुल के अनुरूप ही तुम्हारा आचरण है। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे हाथ में मेरी ब्रह्मास्त्र विद्या सुरक्षित है। उनके परशु का फल चमक रहा था, मेरा कंठ शुष्क हो गया था। उन्होंने यदि उस ब्राह्मण का नाम पूछ लिया तो, परंतु उन्होंने कुछ न कहा। चलते चलते हम अंत में एक विशाल वटवृक्ष के नीचे आए। पर्वत की ढलान पर उतरने में होने वाले कष्टों से हम श्वेत से तर हो गए थे। वटवृक्ष की घनी छाया विश्राम के लिए मन को लुभा रही थी। भार्गव, हम बहुत शांत हो गए, इस वटवृक्ष के नीचे थोड़ा विश्राम कर लें, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, गुरुदेव ने आज्ञा दी। 4 दिनों के उपवास से वे शांत हो गए थे। आवाज भी क्षीण थी। वृक्ष की छाया में देह पर धारण किया हुआ व्याघ्र चर्म बिछा कर वे लेट गए। उपवास, जागरण और पर्वत पर रहने से होने वाले परिश्रम से वे अत्यधिक शांत हो गए थे। उनके वरुण व्रत का आज अंतिम दिन था। भार्गव, सिर के नीचे रखने के लिए कोई पाषाण ले आओ, वे आंखें बंद करते हुए मुझसे बोले। मैंने इधर उधर देखा, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। जिसने मुझे ब्रह्मास्त्र विद्या दे, उस महान तपस्वी की इतनी क्षुद्र मांग भी पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए मन खिन्न हो गया। तत्क्षण आगे बढ़कर मैंने नीचे बैठकर उनके जटाधारी विशाल मस्तक को श्रद्धा से उठाते हुए अपनी जंघा पर रख लिया। जंघा के भगवा वस्त्र के स्पर्श से उन्होंने आंखें खोलकर मेरी ओर अभिमान से देखते हुए कहा, भार्गव, इसे ही तुम्हारी गुरुदेव दक्षिणा मानता हूँ मैं, परंतु निद्रा पूरी हुए बिना मुझे उठाना मत। निद्रा और वचन कभी अधूरे नहीं रहने चाहिए। वह महान योद्धा, दिव्य तपस्वी, जगदग्नि पुत्र, वीरों में वीर, मेरी सूत पुत्र कर्ण की गोद में शांतिपूर्वक निद्रा लेने लगा। मेरे भावुक मन में भावनाओं का कोलाहल मच उठा। बहुतों ने मेरे ऊपर पुष्प वर्षा की थी, मेरा जयघोष किया था, परंतु परम सौभाग्यशाली ऐसा दिन संपूर्ण जीवन में मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। महान से महान क्षत्रियों को बिथर्रा देने वाला छात्र तेज मेरी गोद में विश्राम कर रहा था। उनकी दाढ़ी चमक रही थी, श्वास मंद गति से चल रही थी, लेकिन मेरे विचार चक्र वायु गति से दौड़ रहे थे। वह दिन जीवन की कृतार्थता का दिन था, धन्यता का दिन था। एक घड़ी बीत गई। वटवृक्ष की शाखाओं से छनकर कुछ प्रखर किरणें उनकी दाढ़ीदारी तेजस्वी मुखमंडल पर पड़ी। उनकी निद्रा भंग होने का लक्षण दिखाई देते ही मैंने दोनों हाथों का छत्र उन प्रखर किरणों को रोकने के लिए बीच में रख लिया। गुरुदेव की सांस पूर्ववत लयबद्ध मंद गति से चलने लगी। तीव्र किरणों के जलन हाथों पर सहन करते हुए मैंने निश्वास छोड़ा। इच्छा होती थी कि निरंतर दौड़ते हुए नियति यहीं कहीं इसी तरह ठहर जाए। अन्यायी और अत्याचारी निराधमों को अपने परशु से मौत के घाट उतारने वाला यह वीर योद्धा मेरी गोद में इसी प्रकार निद्रा लेता हुआ लेटा रहे अनंत काल तक। उन्होंने परशु समीप ही रख लिया था। उसके तीक्ष्ण फलक पर मैंने श्रद्धा से दृष्टि डाली। उस पर तीक्ष्ण दांतों वाला एक काला कीटक अपने पैरों की हलचल करता हुआ फिर रहा था। उसकी शरीर रचना देखकर मैं समझ गया कि वह कीटक लकड़ी को खाने वाला तीक्ष्ण दांतों का अलर्क था। मनोरंजनार्थ मैं क्षुद्र कीटक की हलचलों को बैठा बैठा एकटक देखने लगा। परशु के फल पर से उसने सहज ही एक दो चक्कर लगाए। उसको देखते समय मुझे लगा कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन इस कीटक जैसा ही होता है। संसार रूपी परशु पर वह ऐसे ही चक्कर काटता रहता है। अकस्मात वह अलर्क परशु की धार से नीचे फिसल गया। भगवान परशुराम को मस्तक के नीचे रखे हुए मेरी जंघा की ओर ही वह धीरे धीरे सरकने लगा। मन में एक विचार आया कि हाथों से उसको दूर उड़ा दूं, परंतु इससे मेरा शरीर हिल सकता था तथा ऊपर से प्रखर किरणें छूटकर गुरुदेव के मुख पर पड़ सकती थी, उनकी निद्रा भंग हो सकती थी। निद्रा और वचन कभी अधूरे नहीं रहने चाहिए। मैं इसे ही तुम्हारे गुरु दक्षिणा मानता हूँ, उनका यह कथन कान में गूंज रहा था। अतः ज्यों का त्यों निश्चल बैठा रहा, जो भी अवसर आए उसका दृढ़ता से सामना करने के लिए। धीरे धीरे अलर्क सीधा मेरी जांघ के नीचे आ गया। भगवा वस्त्रों को कुतर कर उसने अपने तीक्ष्ण दांत कच्छ से मेरी जांघ की त्वचा में घुसा दिए। असह्य वेदना की एक तीव्र लहर सर्र से जंघा से मस्तक तक तैर गई। उस समय देह पर अभेद्य कवच होता तो कितना अच्छा होता। क्षण भर को वह विचार भी मन में आया, परंतु तुरंत ही मैंने उसे दूर कर दिया। अब आगे का संपूर्ण जीवन मुझे केवल कर्ण के रूप में धैर्यपूर्वक बिताना था, अपने पराक्रम के बल पर। यदि ऐसा होता तो, और वैसा न होता तो उसका रोना ठीक नहीं बैठता था। अलर्क निरंतर जंघा की एक एक नस को कुतरने लगा। रक्त प्रवाह से भगवा वस्त्रों का रक्त रक्तिम हो गया। वेदना के असंख्य बाण जंघा से निकलकर क्षण प्रतिक्षण मस्तक में घुसने लगे। कवचदान करते समय इतनी यातना नहीं हुई थी जितनी भयंकर यातना इस समय हो रही थी, परंतु आंखें बंद कर होठों को दांते तले दबाकर उनको सहन किए बिना गुरुदक्षिणा पूर्ण नहीं हो सकती थी। जैसे भ्रमर वृक्ष की डाल खोखली कर देता है, वैसे ही वह अलर्क कणशः मेरी जंघा को खोखली कर रहा था। जिस रक्त को वारणावत के घने अरण्य में क्रूर बाघ भी नहीं पी सका था, उसे वह क्षुद्र कीट भी जी भर कर पी रहा था। तिल भर भी हिला नहीं जा सकता था। मन की दृढ़ता और शरीर की वेदना, इनमें इतनी घोर स्पर्धा मेरे जीवन में प्रथम बार ही प्रारंभ हुई थी। यह कसौटी का क्षण था, दृढ़ता का क्षण था, सहनशीलता का क्षण था, मन के संतुलन का क्षण था। जंघा की एक एक नस को काटकर रक्त का जीवन रस पीता हुआ अलर्क तिल तिल करके आगे ही सरकता जा रहा था। तीव्र यातनाओं से रक्त जैसे पानी हो गया और वह श्वेत के रूप में भाल पर संचित हो गया। उसको पोछने के लिए ही हाथ हिलाए नहीं जा सकते थे। श्वेत और रक्त, इन दोनों के अतिरिक्त गुरु दक्षिणा के रूप में भगवान परशुराम को और अधिक मूल्यवान मैं क्या दे सकता था। शायद यह पूछने के लिए ही रक्त की एक धारा बहती हुई सीधी परशु के फलक की धार तक चली गई। क्षण भर में उसने परशु के फलक को रंजित कर दिया, धार अदृश्य हो गई। अलर्क ने मेरी जंघा पूर्ण रूप से कुतर कर मेरे भवितव्य में ही एक छिद्र कर दिया। छिद्र में से जंघा पर आकर वह भगवान की दाढ़ी के बालों में हलचल करने लगा। अब उनकी निद्रा भंग हो जाएगी, यह सोचकर मेरे ओठ थरथराने लगे। वह अलर्क उनके शरीर पर भी घाव करने वाला था क्या? एक क्षुद्र कीटक क्या दो प्राणियों के प्राणों को भी खोखला कर देगा? वह गुरुदेव के शरीर को स्पर्श न करे, इसलिए आकाश की ओर देखता हुआ मैं सर्वशक्तिमान सूर्यदेव से प्रार्थना करने लगा। अकस्मात मेरी जंघा से बहने वाले उष्ण रक्त के स्पर्श से गुरुदेव हड़बड़ाकर जग गए। अपनी दाढ़ी में चुलबुलाते हुए अलर्क को उन्होंने झटक दिया। मेरे मन में भावनाओं का इतना प्रचंड कोलाहल मच रहा था कि उसे प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं थे। शायद अब भगवान कहेंगे कि भार्गव, संसार में प्रत्येक शिष्य हुए हैं, आगे भी होंगे, परंतु तेरी गुरुदक्षिणा धन्य है। परंतु ऐसी कोई बात नहीं हुई। गुरुदेव क्षण भर में ही समस्त घटना को समझ गए होंगे। रक्तरंजित अपना परश उठाकर उन्होंने कपाल की त्वचा इतनी तानी कि भौहों के केश जटा से मिल गए। उन्होंने पूछा, इतनी सहनशीलता, इतना आत्मसंयम, भार्गव बोल तो किस कुल का है? भृगु, मैंने रक्त के कुंड से जंघा उठाते हुए उत्तर दिया। रक्तरंजित जंघा की अपेक्षा उत्तर देते समय मेरा मन अधिक रक्तरंजित था। असत्य, तू ब्राह्मण कुमार नहीं है। हिमालय की सी इतनी सहनशीलता ब्राह्मण कुमार में हो ही नहीं सकती। किस क्षत्रिय कुल का है तू? बता, सच बोल। मैं क्षत्रिय कुल का नहीं हूँ, मैं कर्ण हूँ, सूत पुत्र। जिस समय जंघा खोखली हो रही थी, उस समय भी इतनी दृढ़ता नहीं थी जितनी दृढ़ता से मैंने यह उत्तर दिया। जो होना है सो होगा। परशु की धार मस्तक पर पड़ेगी, प्राणों का विहग शरीर पंजा छोड़कर चला जाएगा। क्रुद्ध परशुराम परशु का प्रहार सिर पर करेंगे। सौभाग्य की मृत्यु परशु की धार से स्वर्ग का मार्ग दिखाएगी। कर्ण, हस्तिनापुर का कवच कुंडलधारी कर्ण तू ही है क्या? इंद्र को कवच कुंडलों का दान करने वाला तू ही कर्ण है? हाँ, अब न कवच है और न कुंडल ही। दे दिए मैंने वे इंद्र को, जिससे यह अलर्क मेरी जंघा में छिद्र कर सके। दान सम्राट कहे जाने वाले कर्ण, इस परशुराम के आश्रम में आने का साहस कैसे किया तूने? असत्य क्यों बोला तू? बता, नहीं तो यहीं जलाकर तुझे भस्म कर दूंगा और फेंक दूंगा पूर्व समुद्र की फेनिल तरंगों में। उनके नेत्र आरक्त थे, क्रोधाग्नि की वर्षा कर रहे थे। भगवान, मृत्यु के भय से कर्ण कभी व्याकुल नहीं होता। ब्रह्मास्त्र के लिए मैं गुरुद्रोण के द्वार पर गया, उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। आपके द्वार पर आया, आप ब्रह्म कुमार के अतिरिक्त अन्य किसी को भी ब्रह्मास्त्र देने को तैयार नहीं। फिर हम सुतपुत्र कहाँ जाएं? सत्य क्या और असत्य क्या? यह क्या उच्च कुल उत्पन्न लोगों के कोष्ठ में बांध कर रखा हुआ पशु है? बताइए, मैं असत्य कैसे हूँ? कर्ण, तू और तू ही सामने है, इसीलिए मैं अपने सात्विक क्रोध को रोक रहा हूँ। ध्यान रख, असत्य तो असत्य ही है। जिस परम ब्रह्मास्त्र के लिए तूने इतनी दुर्बुद्धि हुई कि तू मुझसे भी असत्य बोला, वह ब्रह्मास्त्र तुझको ऐन युद्ध के अवसर पर स्मरण नहीं होगा। जा, चला जा। महेंद्र की सीमा छोड़कर परशुराम की क्रोधाग्नि की कक्षा से बाहर हो जा, चलता बन। उन्होंने उपत्यका की ओर उंगली उठाकर मुझे आज्ञा दी। अपने हाथ में लगे परशु पर रक्त के लांछन पोछने पर काव्य प्रयत्न कर रहे थे, परंतु वे पूछ नहीं रहे थे। रक्तरंजित जंघा और घुटा हुआ मन लेकर आघात आहत व्याघ्र की तरह मैं महेंद्र की ढलान पर उतरने लगा। क्या कल्पना लेकर हस्तिनापुर से आया था और क्या हस्तगत करके लौट रहा था। जीवन एक विद्रोह है। कीटक के रूप में आज उसने कर्ण की दिग्विजय को, दानवीरता को खोखला नहीं कर दिया था क्या। जंघा से टपकने वाले रक्त का भी मुझे भान नहीं रहा। देह पर मैले कुचैले सने हुए भगवा वस्त्रों का भी भान नहीं था। महेंद्र के नीले शिखर दूर से ही सुहावने थे, वे पीछे छूट रहे थे, इसीलिए खेद नहीं हो रहा था। विचारों के अश्व मन के प्रांगण पर दौड़ रहे थे। महेंद्र की ढलान से कब उतर आया इसका पता भी नहीं चला। जिस कृषक को वायुजुत सौंपा था उसकी पर्णकुटी के सामने खड़ा होकर अब वायुजुत को पकड़ने लगा, तब उसने मेरे कानों के निचले भागों को ध्यान से देखा, इसीलिए जंघा के छिद्र को देखकर मैं बोला, यदि चाहो तो एक चिन्ह को भी ध्यान से रख लो, यह मेरा घोड़ा मुझे जल्दी दे दो। सन्यासी ठहरो, तुम्हारे घाव पर औषधि वनस्पति रस डाल दो। वह भोला कृषक हाथ उठाकर प्रार्थना करता रहा, उसके शब्द मेरे कानों में घुस ही नहीं रहे थे। हस्तिनापुर की ओर दौड़ते हुए वायुजित के खुरों से उड़ने वाले धूल जंघा पर संचित हो रही थी। 8 शापित विद्या और भग्न हृदय लेकर हस्तिनापुर में प्रवेश करते समय मैंने मन को सुदृढ़ किया। संकट और प्रतिकूलताएं, यही तो प्रत्येक के पराक्रम कसौटी होती है। इस अवस्था में भी मन में दृढ़ विश्वास था कि अर्जुन को निश्चय ही पराजित करूंगा। अपने संकटों का रोना रोकर केवल बैठने से क्या लाभ। वीर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी निष्प्रभ नहीं होते, वे संकटों के सिर पर पैर रखकर खड़े हो जाते हैं। आगे बढ़कर वायुजित की वल्गा हाथ में पकड़ते समय सत्यसेन आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी ओर देख रहा था। नगर का कोई भी व्यक्ति देह पर भगवा वस्त्र होने के कारण मुझे पहचान नहीं सका था। 2 वर्षों के बाद हस्तिनापुर में प्रवेश कर रहा था। जाते समय राज वस्त्र थे, परंतु अब लौटा था काषाय वस्त्र लेकर। सत्यसेन, राजा दुर्योधन नगर में है क्या? वो तो उनको मेरे आने की सूचना दो। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ही मैंने आज्ञा दी। राजप्रसाद की सीढ़ियाँ पहली बार मेरे रक्त का स्पर्श कर रही थी। अब मुझे सब कुछ भूलना था। पीछे मुड़कर देखने वालों के सामने जीवन सदैव खाइयों का निर्माण किया करता है। किसी भी घटना के चिन्ह अब हृदय पटल पर मैं नहीं रखना चाहता था। भूतकाल में मैं कौन था, क्या था, इसका विचार भी मैं नहीं करना चाहता था। मैं आज कैसा हूँ, आगे कैसा रहूँगा, यह निश्चय करने का समय आ पहुँचा था। संपूर्ण शक्ति से टकराने लगा। भगवा वस्त्र उतार कर राज वस्त्र पहने, विशाली ने कोई वनस्पति मंगवा कर उसका रस जंघा के घाव पर डाला। छूछा ज्योका त्यों जंघा पर थाप दिया। पहने हुए अंशुक के आंचल के छोर को तत्क्षण फाड़ कर उसने अपनी उसकी पट्टी जंघा पर बांध दी। सदैव की भांति घाव किसका है कहकर उसने पूछताछ नहीं की। वह विज्ञ पत्नी थी। अनुभव से अब यह सीख गई थी कि यात्रा से थके हुए पति को आंख भर देख कर ही संतोष करना चाहिए। कितनी प्रौण दिखाई दे रही थी वह। उसका साथ मेरे जीवन के अनेक घावों पर ऐसे ही पट्टी बांधता आया था। 4 दशकों की यात्रा मैंने उसका हाथ थामे अपने हाथों में लिए हुए पूरी की। आने वाले प्रत्येक दुख की लौ मैंने उसके प्रेम के चषक में डुबो कर बुझाई थी। वृशाली, माता पिता, शोण, पुत्र, विष्णुषा आदि कुशलपूर्वक है न? वह घाव के संबंध में मुझसे कुछ न पूछे, इसीलिए मैंने उससे पूछा। हाँ, उसको केवल आपकी कुशलता की चिंता थी। ऋषिसेन, सुषेण, सुशर्मा, इनको तो आप पहचान ही भी नहीं पाएंगे। इन 2 वर्षों में इतने लंबे हो गए हैं और विश्वकेतु तो आपकी तरह ही नित्य नियम पूर्वक गंगा किनारे जाता है अर्घदान के लिए। मेरे हाथ में दूध का चषक देते हुए वह बोली। विशाली, माता जैसी बनाती है पुत्र का जीवन वैसा ही होता है। इस दूध की तरह शर्करा डाल दो यह अमृत हो जाएगा, परंतु यदि छाड़ डाल दो तो यह नष्ट हो जाएगा। अपने पुत्रों का लालन पालन तुम जैसी स्नेहमयी माता कर रही हो, फिर भी वे यदि वीर और विजयी न बने तो यही आश्चर्य की बात होगी। मैंने दूध का चषक रिक्त किया। इतने में ही सत्यसेन से संदेश पाकर दुर्योधन हाथ पर से फिसलते हुए उत्तरी को संभालता हुआ जल्दी जल्दी महल में आया। प्रणाम भाभी जी, उसने विशाली को अभिवादन किया। उसको स्वीकार कर विशाली चली गई। अंगराज, ब्रह्मास्त्र, उसने पहला ही प्रश्न पूछा। राजा, ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया बिना मैं कैसे लौट सकता था? उसे यह बताते समय मेरे अंतरंग के किसी कोने में टीस उठ रही थी। जय हो, अब पांडवों का मध चूर्ण करने में अधिक समय नहीं लगेगा। आज ही 12 वर्ष का वनवास समाप्त कर वे 1 वर्ष के अज्ञातवास को चले गए हैं। तो फिर उनको गुप्तचरों को आज से ही उनके पीछे लगा दो। इस वर्ष के अंतर उन्हें ढूंढने पर दोबारा उन्हें 12 वर्ष का वनवास स्वीकार करना पड़ेगा। मेरे सामने इंद्र को आगे कर अर्जुन को संरक्षण देने वाली पांडवों की कुटिल राजनीति का अनुभव प्रत्यक्ष था। जीवन तत्व ज्ञान पर नहीं चला करता, उसके लिए व्यवहार का आश्रय लेना पड़ता है। कर्ण, अपनी सेना के सभी कुशल गुप्तचर पहले ही चारों दिशाओं में जा चुके हैं। प्रत्येक राज्य में, अरण्य में, विजन में, नगर में, तीर्थ क्षेत्र में, इतना ही नहीं बल्कि गुहा में भी पांडवों को ढूंढ निकालने के लिए वे प्राण प्राण से प्रयत्न करेंगे। पांडवों का पता लगाने के लिए मैं तिल मिला रहा हूँ, परंतु घर भेदियों ने उनको छिपा रखा है। पितामह, महामंत्री, विदुर, आमात्य और गुरु द्रोण, ये सब के सब जैसे दिखाई देते हैं वैसे हैं नहीं। यहाँ के सब समाचार पांडवों को प्रतिदिन निश्चय ही मिलते होंगे। राजन, अधिक से अधिक क्या होगा? पांडव प्रकट हो जाएंगे, युद्ध का आह्वान देंगे, उसको स्वीकार करने का सामर्थ्य इन भुजाओं में है। कोई भी तुम्हारा अब अनिष्ट नहीं कर पाएगा। अंगराज, तुम्हारे सामर्थ्य पर ही तो मैं खड़ा हूँ। यदि वैसा कोई अवसर आया ही तो तुम ही कुरुओं के प्रथम सेनापति होने के सर्वथा योग्य होगे। बस इसे निश्चय से व्यवहार करो। तुमको जो वचन दिया है उसे मैं भी पूर्ण करूंगा। अर्जुन का वध किए बिना मैं कभी अपने पैर नहीं धोऊंगा। चलता हूं मैं, तुम विश्राम करो। वह उठा और हाथी की मस्त चाल से भवन से बाहर हो गया। मुझे अंगराज बनाकर मेरे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाला वह वीर योद्धा था। अज्ञातवास का एक वर्ष। गवाक्ष से गंगा की ओर देखता हुआ मैं विचार करने लगा। 6 कारण्डव पक्षियों का एक झुंड जल पर से ऊपर आकाश में उड़ चला, पूर्व दिशा की ओर तेजी से बढ़ने लगा, परंतु उनमें से एक बीच में ही पीछे छूट गया। पंख फहराता हुआ चोंच मोड़ कर वसीधा राजभवन की ओर पश्चिम दिशा पकड़कर विपरीत गति से तेजी से आने लगा। झुंड के पांचों से वह प्रतिक्षण दूर और अधिक दूर होता जा रहा था। मैंने गवाक्ष का द्वार बंद कर दिया। अज्ञातवास का एक वर्ष। यह देखा जाए तो प्रत्येक का जीवन भी एक अज्ञातवास होता है। दुख से दूर जाने के लिए अंगीकार किया हुआ, परंतु अधिक प्रभावशाली दुखों से परिवेष्टित मेरा जीवन भी ऐसा ही था। 75 वर्ष की यह दीर्घ पट्टी घटनाओं के, भावनाओं के उत्कर्ष और अपकर्ष कितने कठिन मोड़ लेती आई थी। किसी से संगति नहीं बैठ रही थी। आगे भी कभी वह बैठने वाली थी या नहीं, भगवान जाने। 9 एक के बाद एक महीना बीतते जा रहे थे, परंतु किसी गुप्तचर को पांडवों का पता नहीं लग रहा था। भीम के संबंध में सोच सोच कर दुर्योधन तो अस्वस्थ हो गया था। कंबोज, काश्मीर, गांधार, पंचनद, सिंध, कुलिंद, तंगड़, विदेह, पांचाल, कोसल, किरात, कामरूप, बंग, मगध, चेरी, दशारण, कलिंग, विदर्भ, अवंती, द्वारका, सौराष्ट्र, आनर्त, मथुरा, विराट आदि सभी राज्यों में पूर्व नियुक्त गुप्तचरों की सहायतार्थ उसने नए दूतों के अनेक पथक भेजे। वेश बदलकर वे उन सभी राज्यों में डटकर पांडवों को ढूंढ रहे थे। असफलता का कटु समाचार प्रति सप्ताह राजभवन से आकर टकरा रहा था। दुर्योधन की अस्वस्थता बढ़ती ही जा रही थी। हृदय के संदेह के मेघ घनीभूत हो रहे थे। द्वारका में तो कुछ दूतों ने श्री कृष्ण के प्रसाद में सेवकों का स्थान भी प्राप्त कर लिया था। उनकी गुप्त सूचनाओं के आधार पर गांधार तक स्वयं दुर्योधन घूम आया था। वह इतना भी नहीं समझ सका कि कृष्ण उसको दिग्भ्रांत कर सकते थे। एक बार तो द्वारका के दूत से समाचार मिला कि पांडव विराट राज्य में विराट नगर में ही कहीं छिपे हुए हैं। तदनुसार दुर्योधन उनको ढूंढने के लिए जिस ओर जाने की तैयारी भी हो गई। विराटों का मत्स्य देश तो हस्तिनापुर का सबसे अधिक निकटवर्ती देश था। वहां रहने की असावधानी पांडव नहीं कर सकते थे। यमुना पार करते ही विराटों का राज्य था। इतना साहस कैसे कर पाएंगे? मेरा अनुमान था कि पांडव हिमालय में कहीं छिपे हुए होंगे, निर्जन ठंडी गुफा में। इसलिए हिमालय की खाइयां और घाटियां, गुहाएं आदि ढूंढी गई। धर्मारण्य, नैमिषारण्य, वारणावत सभी अरण्यों का चप्पा चप्पा छान डाला गया। सोम, पारियात्र, विंध्य, निषद, गोवर्धन, शुक्तिमत, मेकल, ऋक्ष, मल्ल, गंधमादन सभी पर्वतों पर भटक भटक कर दूत थक गए। गौतम, जह्न, दुर्वासा, वाल्मीकि, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु, चमन, हरित और ऋष्य श्रृंग, इन सभी ऋषियों के आश्रमों में शिष्यगणों के बीच कहीं न कहीं पांडव छिपे होंगे। यह विचार कर उन आश्रमों को भी अच्छी तरह छान डाला गया। कहीं भी पांडवों का पता नहीं चल रहा था। अर्जुन के लिए कवच कुंडलों का दान मांगने वाले देवेंद्र ने भय के कारण कहीं उनको स्वर्ग में तो नहीं छिपा रखा था। यह संदेह बार बार मन में झांक जाता था। हस्तिनापुर में प्रभंजन तो आर्य विदुर के पर्णकुटी पर दृष्टि रखता हुआ वहीं अड्डा जमाए बैठा था। अपनी राज माता से मिलने के लिए कभी तो पांडव आएंगे और कुछ नहीं तो कोई संदेश ही भेजेंगे, परंतु यह भी नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि यह संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं वे नष्ट तो नहीं हो गए। अज्ञातवास का वर्ष भी समाप्त होने को आया। एक दो दिन रह गए थे कि सबको आघात देने वाली सूचना विराट नगर की गुप्त दूत ने हस्तिनापुर की ओर भेजी। सूचना यह थी कि किसी ने मुष्टि युद्ध में केवल मुक्कों से ही विराटों के सेनापति कीचक का वध कर दिया था। अविश्वसनीय से प्रतीत होने वाली इस सूचना को सुनते ही मत्स्य देश में दिग्विजय के दिनों मुझसे लड़ता हुआ विशाल का एक कीचक आंखों के आगे आ खड़ा हुआ। उसको मारने का सामर्थ्य अकेले भीम में ही था। भीम विराट नगर में ही होना चाहिए और अर्जुन भी विचारों के चक्र दौड़ने लगे। दुर्योधन ने तत्काल अत्यावश्यक राजसभा आमंत्रित की। अश्वत्थामा सहित सभी को कुरुओं के अन्न पर पलने की बात कही। फिर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विराटों की गौशाला की सैकड़ों गायों का हरण करने के निमित्त से विराट नगर पर आक्रमण किया जाए। गायों के लिए पांडव अज्ञातवास को भी भूलकर प्रकट हो जाएंगे और वचन भंग की कर्तरी में फंस जाएंगे। इस प्रकार उन्हें पुनः वनवास जाना पड़ेगा। अचानक रणवाद्य बजने लगे। कुरुओं के लक्षावधि सैनिक राजभवन के सम्मुख भव्य प्रांगण में एकत्रित हो गए। मेरे साथ दिग्विजय के लिए जाने वाले सैनिक आज गोहरण के लिए सज्जित हो रहे थे, पर मुझे कुछ खटक रहा था। मेरे मन के किसी गहन कोरे में संभ्रम के बादल छाए हुए थे। जीवन नौका नहीं डगबगा रही थी, भटक रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं यह दुर्योधन और मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को भी ज्ञात नहीं था। विराटनगर, सेनापति दुर्योधन ने अपने हाथ उठाकर सेना को आक्रमण की दिशा दिखाई। लाखों घोड़ों के बलगांव में झटके लगे, शंखों की ध्वनि गूंज उठी। महाराज दुर्योधन की विजय हो। गगनभेदी जय जयकार गूंजने लगी। ये आवाजें इतनी ऊंची हो गई यह अनुमान लगाने के लिए मैंने सिर ऊंचा किया। राजभवन के शुभ्र सौंध पर एक शुभ्र केशांकित वृद्ध चिंतित खड़े हुए मुझको दिखाई दिए। पितामह भीष्म हनु पर हाथ रखे हुए थे, आकाश के सभी द्रवित न होने वाले खोखलेपन की ओर देखते हुए। कुरुओं की राजसभा में अपने शब्दों का स्थान दो कौड़ी के बराबर भी नहीं रह गया यह सोचते हुए। अश्वत्थामा, मामा, दुशासन, शोण एवं मैं, हम सभी एक एक सेनापथक के अग्रभाग में जाकर विराटनगर की ओर द्रुत गति से चल पड़े। सबसे आगे खड्ग उठाए हुए दुर्योधन था। पितामह का वृद्ध नेतृत्व अब किसी को भी स्वीकार नहीं था। शाल वृक्ष जैसा दुर्योधन ही उसके उपयुक्त था। विराट असावधान थे। उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उन पर आक्रमण होगा। वे अपने सैनिक कृत्यों में लगे हुए थे, दैनिक कृत्यों में लगे हुए थे। सुअवसर पाकर दुशासन की अश्वसात सेना बाण की तरह विराटों की गौशाला की ओर घुस गई। सहस्त्रों गायों के कंठ के कठबंध कचाकच तोड़े डाले गए। घोड़ों के खुरों के टापों से भयभीत सहस्त्रों गायें रंभाती हुई सिंह पर सिंह टकराती हुई गौशाला के घेरे को तोड़कर बाहर निकल पड़ी। दुशासन के सैनिकों ने जिस ओर आंका उसी ओर भागी। श्वेत, श्याम, मटमैली, लाल अनेक वर्णों की पुष्ट स्तनी उन सहस्त्रों गायों को चारों ओर से घेर कर दुशासन की सेना विराटों की सीमा से बाहर निकली। उनके खुरों के नीचे कछार की कछार उध्वस्त होने लगे। अपना गोधन हरण किया जा रहा है यह देखकर विराटों ने घबरा कर अपनी सेना इकट्ठी कर ली थी। शंख, आनक, नगाड़ों की ध्वनियां गरजने लगी। हमारा पीछा करते हुए विराट पीछे पीछे दौड़ने लगे। एक कछार में एक विशाल शमी वृक्ष पीछे छोड़कर हम विराट और हस्तिनापुर की सीमा प्रदर्शित करने वाले यमुना के तीर पर आए। यमुना पार करते ही हस्तिनापुर था, केवल एक नदी बीच में ही थी। जैसे ही का एक पुरवाई वर्षा से आकाश परिपूर्ण हो जाता है, वैसे ही सैकड़ों बाण हमारी सेना के पीछे से तेजी से आकर चित्ररथ पक्षियों की तरह यमुना के किनारों पर अचूक उतरने लगे। उन बाणों ने क्षण भर में समस्त किनारों को घेरने वाले सुदृढ़ घेरा तैयार कर दिया। उस घेरे को देखकर दौड़ती हुई गायें छिटक गईं और मुंह मोड़कर पुनः विपरीत दिशा में विराटों के नगर की ओर दौड़ने लगी। हमारे सभी सेना प्रमुख उनको रोकने के लिए उनके पीछे पीछे भागे। सामने विराटों की सेना खड़ी थी। अग्र भाग में नीलवर्ण का एक सारथी खड़ा था। वह सारथी था या सेनापति, यही समझ में नहीं आता था। वह निरंतर अविरत बाण फेंक रहा था। मैंने उसको ध्यान से देखा, वह अर्जुन ही था। 13 वर्ष बाद मेरे सामने आकर खड़ा होने वाला मेरा शत्रु अर्जुन, मेरी जीवन सत्ता को स्थान स्थान पर निबद्ध करने वाला, मेरे सुदामन की किशोर देह को चीरने वाला, नील कमलों की माला अपने कंठ में डालकर गर्व से मत होने वाला। अर्जुन ठहर जा। धनुष उठाकर आवेश से मैं उसकी ओर दौड़ा। बाएं हाथ की ओर से शोण और दाएं हाथ की ओर से अश्वत्थामा मुझे संरक्षण देते हुए आगे बढ़े। बाण से बाण टकराए। दिन में चिनगारियों के तारे चमकने लगे। एक घड़ी बीत गई। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध के कोलाहल में बिदकी हुई गायें इधर उधर बिखर कर समीपस्थ अरण्य में आश्रय लेने चली गई थी। युद्ध का निर्णय नहीं हो पा रहा था। सूर्यदेव अब भी तप रहे थे। एकाएक हमारे सभी सैनिकों की दिशा में मूर्छा लाने वाला मादक सुगंधित पवन बहने लगा। जैसे ही वह सैनिकों के नाक में गया, वे खड़े खड़े धड़ाधड़ नीचे गिरने लगे। वह अर्जुन द्वारा छोड़े गए समूहास्त्र का परिणाम था। समूहास्त्र, मूर्छित कर देने वाली मादक वायु उत्पन्न करने वाला अस्त्र। लकड़ी की नलिकाओं में महुए के फूलों का चूर्ण ठस भरकर अर्जुन उनकी वर्षा कर रहा था। उस पर जिस अस्त्र की योजना करनी चाहिए, मैं यह स्मरण करने लगा। मेरे आसपास का दृश्य भी जैसे चक्कर खा रहा था। हाथ से जनरल छूट कर गिर पड़ा। रथनीर पर मस्तक टकराता हुआ मैं भी धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। चेतना नष्ट हो गई। जब जागृत हुआ तब सामने सर्वप्रथम अश्वत्थामा दिखाई दिया। वह मेरे मुख पर पानी का छिड़काव कर रहा था। तत्क्षण उठकर मैंने चारों ओर दृष्टि डाली, जैसे किसी बंजर स्थान पर इतस्तत पाषाण पड़े हुए हों। वैसे ही सहस्त्र पुरुष सैनिक निश्चेष्ट पड़े हुए थे। सबके अंगों पर जो विविध वर्ण उत्तरीय थे उनको कोई हर ले गया था। मेरी देह पर भी मेरा नीला उत्तरीय नहीं था। दलदल में फंसे हुए हाथी की तरह वीर दुर्योधन विराटों के सेना सीमा में कछार पर औंधा पड़ा हुआ था। अश्वत्थामा सबके मुखों पर शिरस्त्राण में भरे हुए पानी का छिड़काव कर उनको जागृत करने का प्रयत्न कर रहा था। अपमान की अपयश की मार्गच्युत जीवन की प्रतीति से मेरा हृदय तिल तिल कर टूटने लगा। अश्वत्थामा ने मुझे जागृत न किया होता तो मूर्छितावस्था की संज्ञानहीन निरवता में मैं उसी तरह पड़ा रहता तो अच्छा होता। अपयश से मूर्छा अच्छी, वहां चेतना के कटु अंकुश नहीं होते। अकस्मात हाथ का जल से भरा शिरस्त्राण फेंक कर अश्वत्थामा हृदय विदारक स्वर में चिल्लाया। मूछ कटे हुए शार्दुल जैसी आर्त चित्कार थी वह। कांड दौड़ो। क्या हो गया? मुझे आवास वजह से किसी ने भय का खड्ग कंठ पर फेर दिया हो। समय समय पर आत्मा के अमरत्व का तत्व ज्ञान मुझे बताने वाला वह प्रज्ञावंत गुरुपुत्र अश्वत्थामा इस प्रकार क्यों चीखा? शरीर का नश्वरत्व बखान करने वाला वह बुद्धिमान व्याकुल क्यों हो उठा? मध्यस्थ सैनिकों के मूर्छित देहों पर झटपट छलांगे लगाता हुआ मैं उसके पास पहुंचा। सामने का दृश्य देखकर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे शरीर के रक्त का कण कण ठंडा हो जाता हो। समूहास्त्र के बिना ही मूर्छा आने लगी। धरती का विशाल पटल बाण के फल जैसा छिद्र लगने लगा। मेरे प्राण प्रिय बंधु का वसु भैया कहने वाला मुख कमल कण ने धड़ से अलग कर धूल में फेंक दिया था। जीवन के सुख दुखों का वह मेरा एकमात्र साथी निर्जीव हो गया था। अपने भैया के अन्यायपूर्वक लिए गए कवच कुंडलों के धन को पुनः प्राप्त करने के लिए वह स्वर्ग का द्वार खटखटा रहा था। अब वसु भैया का रथ कौन हाँकेगा? मुझको छोड़कर कहाँ जा रहे हो? कहकर रथ के पीछे हाथ उठाकर अब कौन दौड़ेगा? भाभी भाभी कहकर विशाली के पीछे पीछे अबोध बालक की तरह अब नित्य कौन चक्कर काटेगा? गंगा पर भूले हुए मेरे उत्तरीय को चिलचिलाती धूप में जाकर अब कौन लाएगा? दान की वस्तु में विहस्त मुख से कौन मेरे हाथ से देगा? कवच कुंडलों का दान मत दो कहकर कौन मेरे चरणों पर धड़ाधड़ सिर पटकेगा? राधा माता की वाम कुक्ष में अब कौन विलगेगा? अपूपों का आग्रह कर कौन मेरे साथ भोजन करेगा? मेघमाला और मीनाक्षी को वसुदादा के प्रेम की प्रतीति अब कौन कराएगा? भैया तुम्हारे कुंडल निस्तेज हो गए हैं। इस प्रकार आकुल होकर मुझे कौन सावधान करेगा? क्षण भर पहले घोड़ों पर आरूढ़ होकर खड्ग घुमाने वाला मेरा शोण खुरों के नीचे की धूल में पड़ा हुआ था। चमचमाता प्रकाश था फिर भी मुझे अंधकार सा लगने लगा। आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मन शुष्क हो गया था, मस्तक बधिर हो गया था। अश्वत्थामन शोण चला गया। गुरुपुत्र के कंधे पर सिर रखकर मैं असहाय भाव से सिसकने लगा। मेरे जीवन रथ का एक चक्र ही उखड़ गया था। अब घिसटते रगड़ते जाना था, बस जीने के लिए ही जीना था। भैया तुम जाओगे क्या गरुण पक्षी की तरह ऊंचे और ऊंचे? यह कहने वाले शोण आज तुम ही कहाँ ऊंचे चले गए हो कभी दिखाई न देने के लिए? कर्ण शांत हो। गुरुपुत्र अपनी आंखें पोंछता हुआ मुझे सांत्वना देने का व्यर्थ प्रयत्न करने लगा। इसी नगर में दिग्विजय के अवसर पर शोण का शिरस्त्राण नीचे गिरा था। एक हाथी के पैर के नीचे आकर कुचल गया था। इस स्मृति से मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा मानव हृदय के टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे हों। उसका गोल गौरवमणि सिर पकड़कर पककर गिरे हुए कोकम के फल की तरह धूल में पड़ा हुआ था। निष्प्राण धड़ लकड़ी के कुंदे की तरह धूल में सना था। नीचे झुककर अचानक मैंने उसका मस्तक उठा लिया। मेरी आंखों से अश्रुओं की झड़ी लग गई। आवेग से उसके विशाल कपाल का अवग्रहण कर मैं नितांत आकुल होकर बोला, शोण एक ही बार मुझे वसु भैया का कर पुकार ले। स्वर्ग का द्वार तोड़कर भी मैं तुझे वापस ले आऊंगा। परंतु वह बोल नहीं रहा था, बोलने वाला नहीं था। यदि उसके शरीर में थोड़ी सी भी धड़कन होती तो वह अवश्य कहता, भैया वायुजीत के खुरों पर नित्य औषध रस डालते रहना, तुम्हारा वह दिव्य मुकुट भूषणागार में सुरक्षित है। राधा माता को संभालना, विशाली भाभी को मेरा अंतिम प्रेमपूर्ण प्रणाम कहना। बचपन में गंगा माता के किनारे मैंने जो सीपियाँ इकट्ठी की थी वे मीनाक्षी के पुत्र को दे देना और अन्य किसी को भी सारथी के रूप में अपने रथ पर नियुक्त करना और तुम्हारी सेवा करने आऊँगा। वसु भैया प्रणाम। परंतु ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, होने वाली भी नहीं थी। जीवन भर सुख दुख की बातें करने वाले हम दोनों भाई उसके अंतिम प्रयाण के अवसर पर एक दूसरे से मिल भी नहीं सके थे। अब वृशाली को कौन सा देवर दूंगा मैं? राधा माता के अश्रु सांत्वना के किस वस्त्र से पूछूंगा मैं? मेघमाला के बाल पर लगे हुए कुमकुम तिलक को पूछने के लिए धैर्य कहाँ से लाऊंगा? कुरुओं का दिग्विजयी राजध्वज किसके हाथ में दूंगा? जीवन के सुख दुख की बातें किससे करूंगा? छोड़, छोटे आज्ञा नहीं दिया करते, यह कहकर किस पर क्रोध करूंगा? छोड़ छोड़, ग्रीष्मकाल में जैसे चातक पुकार करता है, वैसे ही मेरा मन बार बार पुकार रहा था। आज वास्तव में मैं एकाकी रह गया था। जीवन नश्वरता का महासागर प्रतीत हो रहा था, अर्थहीन कलह का अनंत अर्णव प्रतीत हो रहा था। उधर में आकाश जैसे विशाल खोखलेपन का गड्ढा बन गया था। पंच प्राणों की महाबाण अश्रुओं के रूप में आंखों के कगारे तोड़कर बह रही थी। कवच कुंडल दान करते समय या महेंद्र पर जंगा खोखली होते समय इतना रक्त भी मेरे शरीर से नहीं निकला था। उसके आधे खुले हुए नेत्र मैंने तर्जनी से सदा के लिए बंद कर दिए। मेरी यही इच्छा हुई कि मेरे अशुभ अभद्र असमर्थ शरीर को वह न देखे। ऊपर से सुंदर दिखाई देने वाला यह क्रूर जगत पुनः उसके दृष्टिपथ में भी न आए, इसीलिए मैंने उसके नेत्र बंद कर दिए। जाओ छोड़, निसंकोच जाओ। इस कर्ण की ओर से संसार ने तो मुंह फेर ही लिया, अब तुमने भी मुंह फेर लिया, फिर भी निसंकोच जाओ। मन ही मन यह कहते हुए उसके कटे हुए मस्तक को जीव का तो धड़ से जोड़कर रख दिया। उसका मुख आच्छादित करने के लिए मेरे पास वस्त्र नहीं था। मैं जग को अतलसी बहुमूल्य वस्त्र प्रदान करता आया था, किंतु अपने बंधु के मृत शरीर पर डालने के लिए मेरे पास वस्त्र नहीं था। मन क्रंदन कर रहा था। अश्वत्थामा अपना प्राण त्याग कर अपने मस्तक पर बंधा हुआ वस्त्र उसके मुख पर डालने के लिए वस्त्र की गांठ खोलने लगा। मैंने उसके हाथ पकड़ लिया। मैंने फिर वायुजीत की पीठ पर से पर्याण का वस्त्र उतारा और फाड़ कर सोण की मृतदेह आच्छादित कर दी। उस अपूर्ण वस्त्र से मेरे प्रिय बंधु का एक हाथ बाहर झांक रहा था। उसने मरते समय भी जो खड्ग उस हाथ में कसकर पकड़ रखा था, वह भी ज्यों का त्यों था। नीचे झुककर बड़े प्रयास से उसकी मुट्ठी से मैंने जैसे तैसे उसे छुड़ाया। उठकर खड़े होकर उसको हाथ में ऊंचा करके मैं बड़ी जोर से चिल्लाया, छोड़, जग में कर्ण या अर्जुन एक ही जीवित रहेगा, एक ही। अर्जुन के स्मरण मात्र से शरीर में विष का प्रवाह सा दौड़ रहा था। संपूर्ण देह संताप से थरथरा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शोक क्रोध आदि इन विरोधी भावों से सारी नसें कहीं धड़क न जाएं। मैंने प्रतिज्ञा की, परंतु उसका क्या उपयोग था? अर्जुन को जान से मारने पर भी शोण अब लौटने वाला थोड़े ही था। वह इस जगत में कहीं नहीं था, यह सत्य कटु होते हुए भी सत्य ही था। हाथ से खड्ग फेंक कर शोण के मृतदेह पर आच्छादित किए हुए वस्त्र पर गिर कर मैं दहाड़े मारकर रोने लगा। मैं अंगराज नहीं था, दिग्विजयी सेनापति नहीं था, दानवीर नहीं था, परशुराम का शिष्य नहीं था। इतना ही नहीं, मैं कर्ण भी नहीं था। अपने प्रिय बंधु के क्रूर वध से विवल हृदय तड़पने वाला, क्रंदन करने वाला व्यक्ति मात्र था मैं। केवल एक मनुष्य था, मनुष्य। 10. शोण की पार्थिव देह का यमुना तीर पर दहन संस्कार कर लौटते समय मेरा मन सुन्न हो गया था। कुछ प्राण प्रिय साथी जीवन यात्रा में बीच में इस प्रकार छोड़कर क्यों चले जाते हैं? क्या है जीवन का अर्थ? केवल दो घड़ी का खेल? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी सूझ नहीं रहा था। शोण की मृत्यु से निराशा का जाल बुनता हुआ मन लिए हुए ही मैं हस्तिनापुर लौटा। उसके भीतर गांठ की तरह एक ही भाव दृढ़ था, अर्जुन से प्रतिशोध। मेरे सगे बंधु का वध करने वाले प्रबल शत्रु अर्जुन से प्रतिशोध। जो घटना घटित हुई थी उसकी सूचना किसी ने पहले ही राजभवन पहुंचा दी थी। राधा माता, विशाली और मेघमाला का विलाप असह्य हो गया। मेरा शत्रुंतप कहाँ है पूछने वाली राधा माता के लिए मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। दादाजी, मेरा सर्वस्व कहाँ है यह पूछने वाली मेघमाला को सांत्वना देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। देवर, आह देवर कहकर छाती पीटने वाले विशाली की ओर देखा नहीं जाता था। 15 दिन बीत गए थे, फिर भी किसी को यह सत्य ही नहीं लगता था कि शोण हमारे बीच नहीं है। कार्तिक की ठंड से राजभवन के पाषाण जम गए थे। शोण की मृत्यु से हम सबके मन जम गए थे, परंतु कहीं न कहीं उसका अंत होना आवश्यक था। पर मन हिम का थोड़े ही होता है जो उष्ण अश्रुओं से पिघल जाए, वह कठोर पाषाण का होता है। दुख का जितना चिंतन किया जाए वह उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। केवल एक ही उपाय उस पर प्रभावशाली होता है और वह है विस्मृति। विस्मृति प्रकृति द्वारा प्रदत्त सर्वश्रेष्ठ उपहार है। यदि वह न होती तो विविध स्मृतियों के कारण मनुष्य पागल हो जाए। मन को संयत कर मैंने स्वयं को संभाला। मुझे जीना था। शोण के कंठनाल को छिन्न करने वाले अर्जुन के गले में धनुष अटकाना था। संपूर्ण जीवन भावनाओं की उथल पुथल देखने में और अनुभव करने में बीत गया था। अब एक ही भाव शेष रह गया था, प्रतिशोध का, बदले का। उसके लिए चाहे जो मोल चुकाना पड़े, जहां कहीं मिले वहीं से ढूंढ ढकोर कर मुझे अर्जुन को मारना था। इसी कारण सेना तैयार रखो कहने के लिए मैं दुर्योधन के महल में पहुंचा। राजन, जिस समय मैं कहूँ उसी समय मुझे सेना चाहिए, किस लिए चाहिए यह मत पूछना। अंगराज, मेरी सेना का क्या पराक्रम कर सकती है, यह मैं ही क्या सारा वर्त आर्यावर्त जानता हूँ, फिर भी मैं चिंताग्रस्त हूँ। वह भाव में तानता हुआ बोला, क्यों चिंताग्रस्त, चिंता कैसी? आज ही द्रुपद राजा के यहाँ से सचिव आया था, पांडवों को आधा राज्य देकर समझौता कर लो, वह यह प्रस्ताव लेकर आया था। मैं उसके विचार को स्वीकार करने की सोच रहा हूँ। नहीं, समझौता नहीं, संधि नहीं। तुम यदि लड़ सको तो मैं अकेला पांडवों से लड़ूंगा, परंतु शरण में नहीं जाना है। उसकी चंचलता मेरी समझ में नहीं आ रही थी। विराटनगर में जो पराजय हुई थी, शायद उससे वह घबरा गया था। नहीं कर्ण, पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर पुनः श्री कृष्ण आने वाला है। विराटनगर से बाहर आकर पांडव उपलाव्य नगर में रह रहे हैं, श्री कृष्ण भी उपलाव्य नगर में आ गया है। पांडवों की शक्ति बढ़ रही है। राजन, जीवन भर मैं तुम्हारी बात मानता आया हूँ, अब आगे तुम मेरी मारो। पांडवों से प्रकट रूप में युद्ध करने के लिए मैं सदैव तैयार हूँ, उनको युद्ध का आह्वान दो। कर्ण, मेरी भी इच्छा नहीं थी कि पांडवों को कुछ दिया जाए, परंतु अकेले अर्जुन ने विराटनगर में हमारी जो दुर्दशा की थी उसे देखकर उन पांचों का कैसा सामना किया जाएगा यह चिंता होने लगी। दिग्विजय में मैंने जिन राजाओं को पदाक्रांत किया है वे सभी हमारी सहायता करेंगे, आज ही उनको संदेश भेज दो। 5 क्या 50 पांडव भी हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे यदि वे नीतिपूर्वक लड़े तो। ठीक है, इस प्रकार सहायता की यदि आशा हो तब तो पांडवों से लड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं सबको पत्र भेजूंगा, परंतु वे तुम्हारे नाम से होंगे। यदि उन्होंने स्वीकृति दी तभी मैं श्री कृष्ण के संधि के प्रस्ताव को ठुकरा सकूंगा। दूत भेजो। मैंने उसे स्वीकृति भी दी, वह मेरे ही नाम से देश देश के राजाओं को पत्र भेज दे। केवल एक ही भावना मन को डरा रही थी और वह थी श्री कृष्ण के बारे में।